समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड डे टू एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेट नाइट इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi calls upon people to remain united against forces conspiring to divide the country.
गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, ये पर्व केवल ऐतिहासिक गौरव का उत्सव नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सोमनाथ मंदिर यात्रा से परिचित कराने का अवसर भी है।
Mr. Modi leads the grand Shaurya Yatra as part of the historic Somnath Swabhiman Parv.
Social media platform X ने माना है कि सामग्री को मानक के अनुरूप बनाए रखने में चूक हुई है, भविष्य में नियम कानून के अनुसार चलने का भरोसा दिलाया।
Another Hindu youth killed in Bangladesh, intensifying concerns over violence against religious minorities.
और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर का अनुमान।
एंड इन विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट, दिल्ली कैपिटल्स टू टेक ऑन गुजरात जायंट्स इन नवी मुंबई दिस इवनिंग। एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सोमनाथ स्वाभिमान पर्व।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक गुजरात के सोमनाथ में मनाया जा रहा है। ये पर्व भारत के उन असंख्य नागरिकों की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और ये बलिदान आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा।
Yes, absolutely. And the program marks 1000 years since Mahmud of Ghazni's invasion of the Somnath temple in the year 1026. And despite multiple repeated attempts for its destruction over centuries, the Somnath temple stands today as a powerful symbol of resilience, faith and national pride, owing to the collective resolve and efforts to restore it to its ancient glory.
स्वतंत्रता के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास सरदार पटेल द्वारा किया गया। इस पुनरुद्धार यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1951 में हासिल हुई जब जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में भक्तों के लिए औपचारिक रूप से खोला गया। 2026 में इस ऐतिहासिक जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विशेष महत्व बढ़ गया है।
Yes, and on the second day of his Gujarat visit today, Prime Minister Narendra Modi led the Grand Shaurya Yatra at Prabhas Patan, organized as part of the historic Somnath Swabhiman Parv. And the Yatra was a ceremonial procession of 108 horses organized to honor the countless warriors who defended the Somnath temple over centuries. And thousands of devotees from across the country took part in the procession.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने 72 घंटों तक निरंतर ओमकार जाप और मंत्रों के पाठ का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कल शाम 1000 ड्रोन और वैदिक गुरुकुलों के 1000 छात्रों की उपस्थिति में सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा प्रस्तुत की गई।
Yes, and the Prime Minister Modi emphasized that the mesmerizing presentation of mantras and bhajans is beyond words, and only time can capture this experience. The Prime Minister underlined that this celebration embodies pride and honor, dignity and knowledge, grandeur and heritage, spirituality and realization, experience, joy and intimacy.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से एकजुट रहने और देश को बांटने की साजिश रचने वाले सभी ताकतों को पराजित करने का आह्वान किया है।
वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है, हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रत रही है।
प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने अतीत से गहराई से जुड़े रहते हुए विकसित भारत के उद्देश्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर और दिल से दिल मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह किया।
Absolutely, and describing the parv as a vibrant reflection of the eternal faith and devotion, the Prime Minister stated that this festival is not merely a celebration of historical glory, but a vital opportunity to keep the timeless journey of the Somnath Temple alive for future generations.
भारतीय सभ्यता की मूल्यों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता हमें दूसरों को हराना नहीं सिखाती, बल्कि संतुलित जीवन जीना सिखाती है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर में निहित आस्था घृणा विनाश का संदेश नहीं देती, बल्कि प्रेम का संदेश देती है। गजनी से लेकर औरंगजेब तक के लगातार आक्रमणों के बाद मंदिर के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण की यात्रा को याद करते हुए श्री मोदी ने बताया कि कैसे सोमनाथ मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण हुआ और अभिषेक की कैसी बात है, मतलब कितनी आश्चर्यजनक बात है, इतनी बार इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई लेकिन लोगों ने कभी हार नहीं मानी, अपनी आस्था अपनी संस्कृति को बनाए रखा और उसका जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया बार बार। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें हमेशा उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि अंत में बुराई की हार ही होती है।
Absolutely, and this Somnath Temple's fight against shows that the kind of resilience it has shown over the years, isn't it? And Prime Minister Modi remarked that one must imagine the history of 1,000 years ago, when in 1026 AD, Mahmud of Ghazni first attacked and destroyed the Somnath Temple, and this is what I was talking about, Akarshita, believing he had erased his existence. But he highlighted that within a few years, Somnath was rebuilt, and in the 12th century, King Kumarapala carried out the grand restoration of the temple. He noted that at the end of the 13th century, Alauddin Khilji again dared to attack Somnath, but the ruler of Jalore fought valiantly against Khilji's armies.
प्रधानमंत्री ने कहा कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में जूनागढ़ के राजा ने एक बार फिर मंदिर की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया और बाद में उसी शताब्दी में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, लेकिन उसका प्रयास भी विफल रहा। उन्होंने याद दिलाया कि 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया और उनके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इसे मस्जिद में बदलने का प्रयास किया, लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान औरंगजेब ने सोमनाथ को अपवित्र किया और इसे फिर से मस्जिद में बदलने का प्रयास किया। फिर भी अहिल्याबाई होलकर ने बाद में एक नए मंदिर की स्थापना करके सोमनाथ को पुनर्जीवित किया।
Yes, and but one thing to note here, Akarshita, is that the history of Somnath is not one of destruction and defeat, but of victory and reconstruction, underlined the Prime Minister. And he also stressed that the invaders kept coming, new assaults of religious terror occurred, but in every era, Somnath was re-established again and again. He lamented that historically, a mentality of religious fanatism often reduced these invasions to ordinary looting, while the stories of those who sacrificed their lives to defend the temple did not find any place in history.
सोमनाथ के स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण के समर्थकों ने पहले चरमपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे और जनता के गहन आध्यात्मिक संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर के लिए सब कुछ कुर्बान करने वालों को महत्व नहीं दिया गया और कुछ राजनेताओं ने धार्मिक रूप से प्रेरित हमलों को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि नफरत और क्रूरता का इतिहास हमसे छिपाया गया है और तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल लोगों ने चरमपंथी ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।
Yes, and Mr. Modi said that those forces who opposed the restoration of Somnath Temple are present and active in India. And Mr. Modi further said that such forces are conspiring against India, and hence we have to be vigilant and powerful.
प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ की हजार साल पुरानी गाथा मानवता को ये सबक देती है, अतीत और विरासत से जुड़े रहते हुए विकास और भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लेने, चेतना को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता को अपनाने और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से प्रेरणा लेकर प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने, हर चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान करती है। उन्होंने सभी नागरिकों को एक बार फिर से इसकी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
Akarshita was talking about the story of the Somnath Temple, and I think the story of the Somnath Temple speaks of a resilience like never seen before, isn't it? And so to conclude our discussion, 1,000 years ago, the invaders believed they had won, but today, even after a millennium, the flag atop Somnath Mahadev's temple proclaims to the entire creation the strength and capability of the nation. Every particle of the soil of Prabhaspatan is a witness to valor, courage and heroism, and that countless devotees of Shiva sacrifice their lives for the preservation of Somnath's form.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, terracotta is an ancient and diverse art form in India, using baked clay for functional pottery, religious idols and decorative items. And terracotta is deeply rooted in a culture from the Indus Valley times to this present day. And Ashir Kandi terracotta is renowned for its traditional clay craft made in Ashir Kandi village of Dhubri district in Assam. We have more from a correspondent.
Ashir Kandi is the single largest cluster in India where both terracotta and pottery crafts made in traditional way. Located under the Debitola development block of Dhubri district, Ashir Kandi lies around 14 kilometers east of Dhubri town and nearly 190 kilometers from Guwahati. Home to about 80 families, Ashir Kandi thrives on terracotta craftsmanship with men and women of all ages engaged in the art. From traditional horses, elephants and human figurines to household and decorative items, clay work remains the primary source of livelihood for most residents. Despite its small size, the village has gained recognition for its distinctive handcrafted clay art made entirely from locally sourced soil. The age-old craft is passed down through generations, with children often learning the skills at a very early age, keeping alive a tradition that continues to define the identity of the village. This Ashir Kandi terracotta will be Assam's tableau at the Republic Day Parade on 26 January, and it will bring national attention to the Ashir Kandi village of Dhubri district, showcasing one of the state's lesser known yet culturally rich rural crafts. Aminul Hazuddar, Akashvani News, Guwahati.
और अभिषेक, मकर संक्रांति भी आने वाली है और संक्रांति में जो है पतंग उड़ाना और भी बहुत चीजें होती है जो हम करते हैं, लेकिन जो हर राज्य है, हर स्टेट्स हैं, वहां पे कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कोई स्नान करता है तो कोई पतंग उड़ाता है, तो कोई गुड़ के बने हुए बहुत ढेर सारे ऐसे
स्वीट मीट्स
मिठाइयां हैं
प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग दिस संक्रांति फेस्टिवल, एंड इट्स अ ग्रेट डेलिकेसी इन बंगाल।
जी, तो अभी हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, कि गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर आयोजित होने वाला वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा और मेला है जहां पवित्र गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति से जुड़ा ये उत्सव इस वर्ष 10 से 17 जनवरी 2026 तक निर्धारित है, जिसमें मुख्य पवित्र स्नान महास्नान मकर संक्रांति के दिन होने की उम्मीद है। एक ऐसा क्षण जब लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं। और जानकारी हमारे संवाददाता से।
Ganga Sagar is deeply revered in Hindu tradition. With the Kapil Muni temple at its heart, pilgrims believe that a sacred dip here cleanses sins and ushers in spiritual renewal. The mantra, Shaptirtho Barbar, Ganga Sagar Ekbar, reflects the long-held belief that a visit here at least once in a lifetime is supremely auspicious. This year's Mela is anticipated to witness an exceptionally large turnout, with estimates suggesting over a crore of pilgrims, partly because there is no major Kumbh Mela in 2026 to manage the massive crowds and to ensure pilgrim safety and smooth movement throughout the Mela area. Authorities have introduced high-tech measures including extensive CCTV networks, drone surveillance and real-time monitoring. Preparations also include thousands of toilets, water stations, medical facilities, QR-coded wristbands for vulnerable pilgrims and eco-friendly initiatives to minimize environmental impact. Railways and road services have been boosted with additional trains, buses and vessels to facilitate travel. Overall, Ganga Sagar Mela 2026 combines age-old faith with modern organizational strategies, making it one of India's most important religious gatherings this year. Sandeep Dasgupta, Akashvani, Kolkata.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे मैच में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। ये मैच मुंबई के डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में शाम 7:30 बजे से होगा। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें।
In today's episode, we remember freedom fighter and second prime minister of India, Lal Bahadur Shastri, who died on the 11th of January 1966. He was deeply influenced by Swami Vivekanand, Mahatma Gandhi and Annie Besant, and joined the Indian independence movement in the 1920s under the guidance of Mahatma Gandhi. He led the country during the Indo-Pakistan War of 1965 and inspired the Indians with the slogans Jai Jawan, Jai Kisan.
Jai Jawan, Jai Kisan.
Lal Bahadur Shastri was born near Varanasi in Uttar Pradesh. Dedicated to studies from childhood, Shastri walked many miles to his school in Varanasi without shoes, even when the streets burned in the summer heat. As he grew up, he was drawn towards the Indian independence movement. At the mere age of 11 years, he was greatly impressed by Mahatma Gandhi.
In January 1921, when Lal Bahadur was in the 10th standard and 3 months from writing the final examinations, he attended a public meeting in Banaras hosted by Gandhi and Pandit Madan Mohan Malviya. Inspired by the Mahatma's call for students to withdraw from government schools, Shastri withdrew from the school the next day and joined the non-cooperation movement. Later, he joined the Kashi Vidyapeeth in Varanasi. There, he came under the influence of the greatest intellectuals and nationalists of the country.
Shastri enrolled himself as a life member of the Lok Sevak Mandal, founded by Lala Lajpat Rai, and began to work for the betterment of the so-called lower castes under Mahatma Gandhi's direction at Muzaffarpur, Bihar. Lal Bahadur Shastri led many defiant campaigns during the civil disobedience movement and spent a total of 7 years in British jails.
When the Congress government was formed in 1946, this little dynamo of a man was called upon to play a constructive role in the governance of the country. He was appointed parliamentary secretary in his home state of Uttar Pradesh and soon rose to the position of home minister.
He moved to New Delhi in 1951 and held several portfolios in the Union Cabinet.
After the death of Jawaharlal Nehru, Shastri became Prime Minister of India on the 9th of June 1964.
Humare sabhi matbhed एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज्यादा से ज्यादा मेलजोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सकें संगठन और अनुशासन से ही राष्ट्र बलवान होते हैं
शास्त्री's most serious test as prime minister was the 1965 Indo-Pak War, and he handled the Pakistani actions with tact, firmness, and a quiet determination, securing the support of political leaders, bureaucracy, as well as the armed forces. He addressed the nation after the end of the India-Pakistan War, reiterating that any more aggression from Pakistan will be met with appropriate retaliation.
Aaj sabere 3:30 baje, Bharat aur Pakistan mein ladai band ho gayi. पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा अंधेरा नहीं रखा जाएगा लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज पर जो भारत का अटूट हिस्सा है या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे
शास्त्री डाइड इन ताशकंद उज़्बेकिस्तान ऑन द 11th ऑफ जनवरी 1966 वन डे आफ्टर साइनिंग अ पीस ट्रीटी टू एंड द 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर लाल बहादुर शास्त्री सक्सेस lay in his approach of taking decisions based on consensus after extensive discussions. We salute the great leader.
Yes, and we are also remembering Thomas Hardy, who passed away on this day in 1928. He was an English novelist and poet, a Victorian realist in the tradition of George Eliot. He was influenced both in his novels and in his poetry by Romanticism, including the poetry of William Wordsworth. He was highly critical of much in the Victorian society, especially on the declining status of rural people in Britain, such as those from his native southwest England. While Hardy wrote poetry throughout his life and regarded himself primarily as a poet, his first collection was not published until 1898. Initially, he gained fame as the author of novels such as Far from the Madding Crowd in 1874, The Mayor of Casterbridge 1886, Tess of the Ubervilles 1891, and Jude The Obscure 1895.
आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक पंडित राम चतुर की पुण्यतिथि है भारतीय संगीत के सर्वोत्तम स्वरूप की साधना करते हुए उन्होंने विभिन्न देशों में संगीत प्रेमियों के लिए प्रस्तुतियां दी मल्लिक जी ध्रुपद खयाल ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे आइए सुनते हैं उनका ये शास्त्रीय गीत
Yes, and Sir Edmund Percival Hillary passed away on this day in 2008. He was a New Zealand mountaineer, explorer, and philanthropist. On 29 May 1953, Hillary and Sherpa mountaineer Tenzing Norgay became the first climbers confirmed to have reached the summit of Mount Everest. They were part of the 9th British expedition to Everest, led by John Hunt. From 1985 to 1988, he served as New Zealand's High Commissioner to India and Bangladesh and concurrently as ambassador to Nepal. Hillary became interested in mountaineering while in secondary school. He made his first major climb in 1939, reaching the summit of Mount Olivia. He served in the Royal New Zealand Air Force as a navigator during World War II and was wounded in an accident. Prior to the Everest expedition, Hillary had been part of the British reconnaissance expedition to the mountain in 1951, as well as unsuccessful attempt to climb Cho Yu in 1952. As part of the Commonwealth Trans-Antarctic expedition, he reached the South Pole overland in 1958, and he subsequently reached the North Pole, making him the first person to reach both poles and summit Everest, and Time named him one of the 100 most influential people of the 20th century. And also, Akarshita, Eric Rohmer passed away on this day in 2010. He was a French film director, film critic, journalist, novelist, screenwriter and teacher. Rohmer was the last of the post-World War II French New Wave directors to become established. He edited the influential film journal Cahiers du Cinéma from 1957 to 1963. Rohmer gained international acclaim around 1969 when his film My Night at Maud's was nominated at the Academy Awards. He won the San Sebastian International Film Festival with Claire's Knee in 1971 and the Golden Lion in the Venice Film Festival for The Green Ray in 1986. In 2001, Rohmer received the Venice Film Festival's Career Golden Lion. And after his death in 2010, his obituary in the Daily Telegraph called him the most durable filmmaker of the French New Wave, outlasting his peers and still making movies the public wanted to see late in his career.
आज ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में साहित्य रसिकों के लिए रचनाएं करने वाले सुप्रसिद्ध कवियों में शुमार श्रीधर पाठक की जयंती है। वे स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि थे। उन्हें कवि भूषण की उपाधि भी दी गई थी। श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा सहज परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं वनाष्टक, काश्मीर, सुषमा, देहरादून, भारत गीत, गोपिका गीत आदि।
Yes, and V. Madhusudana Rao passed away on this day in 2012. He is an Indian film director, producer and screenwriter, known for his works predominantly in Telugu cinema. He is popularly known as Victory Madhusudana Rao, and he directed nearly 70 films, including musical hits such as Annapurna in 1960 and Aradhana in 1962. And he was honored with the prestigious Raghupati Venkaya Award for Lifetime Contributions to Telugu cinema by the government of Andhra Pradesh. And William James was born on this day in 1842. He's an American philosopher and psychologist. The first educator to offer a psychology course in the United States, he is considered to be one of the leading thinkers of the late 19th century and one of the most influential philosophers, and is often dubbed the father of American psychology. And also, Anu Agarwal was born on this day in 1969. She's a former Indian model and actress. After a brief stint in modeling and vijaying and appearance in Doordarshan serial Isi Bahane in 1988, she made a Bollywood debut with the musical blockbuster Aashiqui, following which she was very much in demand. Let's listen in to a dialogue from the movie.
Kya chahte ho tum mujhse?
Tumhari chahat.
Kyun?
Kyunki mujhe is baat pe pura vishwas hai ki mera bhavishya tumse juda hua hai.
जब मेरा ही कोई भविष्य नहीं है तो मेरे साथ तुम्हारा क्या भविष्य हो सकता है? राखी देर में चिंगारी।
तुम्हें दुनिया भुला दूंगा, तेरी चाहत में मैं दुनिया भुला दूंगा, तेरी चाहत में ओ दुश्मन।
And Fatima Sana Sheikh was born on this day in 1992. She's an actress who works in Hindi films. Sheikh started a career as a child artist in such films as Chachi, Char So Bees and One Two Ka Four. In 2016, she portrayed wrestler Geeta Fogart in the top-grossing sports film Dangal. Let's listen to a dialogue from that movie.
Yo to purana tarika hai. Ruk. Pakad manna.
Hai pakad. Haan.
यो अंगूठा ले, इस तरीके अंदर घुसा और साइड में ले, सामने नहीं है, साइड में तो उन्हें घुस।
ये गलत है मेरी टेक्निक में, ये गलत है।
ना पापा गलत ना है, यो ज़्यादा करेक्ट वाड़ा है, खुद साहब ने सिखाया।
घड़ी पहलवान होगी है तू, इंटरनेशनल, हैं?
पापा मैं तो
And also Rahul Dravid was born on this day in 1973. He is a former cricket player, ex-captain and ex-head coach of the Indian national cricket team.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।